الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
यहाँ देखिए आप सजदा करते हुए आपने देखा, जब कौमे से में हो गए, रुकू से उठे, खड़े हुए, दोबारा हाथ ऊपर किए गए और रुकू सजदे में गए। सजदे में जो चीज़ अहम है मैं ये देखिए, पाँव। अमूमन जो गलतियाँ होती हैं वो क्या कि हमारे पाँव खुले होते हैं, दोनों पाँव बिल्कुल सीधे, यानी नीचे उंगलियों को मोड़ा होगा, उंगलियों का रुख भी किबले की तरफ है, नीचे से पंजे जुड़े हुए। मुमकिन हो तो आप पीछे से एड़ी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये पोजीशन भी होगी तो ठीक है। और उसके बाद हाथों की पोजीशन अगर आप देख रहे हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से खोलते थे कि आपकी ये जो बगलों की सफ़ेदी दिखती थी। आपने मना किया कि यानी इस तरह भी नहीं पढ़ना कि यूं सिपट जाए, और इतना भी नहीं खोलना कि मुबालगे की हद तक हो। और इस तरीके की कैफियत आपकी होती थी कि बिल्कुल ऐसे। और हदीस में आता है कि 7 हड्डियों पे सजदा करो। ये सारी दलाइल, सारे दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बुक में मौजूद हैं। सजदा करने का तरीका, पहली बात तो है कि जब सजदे में जाएंगे ना तो पहले हाथ रखेंगे ज़मीन पे। ये भी एक मुगालता होता है कि पहले ये अपने टखने रखे जाएं, टखने ही बोलते हैं ना, नीज, घुटने, घुटने रखे जाएं या हाथ रखे जाएं। तो जो हाथ घुटने वाली है वो ज़यीफ़ है, लेकिन हाथ पहले रखे जाएंगे। और हाथ भी कैसे रखे जाएंगे, सीधे। बस आप देखिए, आप सजदा करते हैं ना, बाज़ लोग यूँ हाथ रखते हैं और बाज़ यूँ, बिल्कुल सीधे। हर चीज़ आपकी किबले के रुख पे फोकस हो, सीधा यूँ रखेंगे। उसके बाद ये माथा, ये माथे से लेके नाक, ये पूरा आपका ज़मीन पे लगना चाहिए इस तरीके से। यूँ नहीं करना, यानी बाद दफ़ा ग्लासेस पहने होते हैं और वो ग्लासेस आपकी नाक को ज़मीन पे लगने से रोक देते हैं, ये सही तरीका नहीं। माथा लग गया और नाक नहीं लगा तो भी सजदा नहीं होगा, नाक लग गया और माथा ऊपर है तो भी नहीं होगा, ये पूरी चीज़ होगी। फिर इस तरह आपके ये जो हाथ है, ये कोहनी है, ये उठी होंगी, यानी ये बिल्कुल ये ज़मीन पे नहीं बिछनी चाहिए इस तरीके से कि आप बिल्कुल नीचे कर दें। और इस तरीके से आपने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया कि 7, यानी 7, 7 हड्डियों पर सजदा करूं। पेशानी, ये जो है हमारी, ये एक हड्डी है, फिर दोनों हाथों की हड्डियां, ये जो हम ज़मीन पे रखते हैं, फिर दोनों घुटनों की, ये जो नीस नीचे देते हैं, और फिर पाँव की जो पीछे दो होती हैं। अब कुछ लोग एक गलत फहमी से क्या है कि वो ये कोनियों को ज़मीन पे टिका लेते हैं, और अफसोस की बात है कि इसको भी शायद ख़वातीन तक ही मेरा अलग किया गया है। हालांकि इसके बारे में इतनी यानी वाज़े रिवायत मिलती है कि कोनियाँ ज़मीन पे नहीं टिकेंगी। इसके लिए मैं आपको एक हदीस पढ़ के सुना देती हूँ। और ये सारी बातें ना आप अपने लिए सुन रहे हैं, जिस वक्त आपका शरह सदर होगा ना, आप अमल कर लें। दूसरे वो लोग जो बेचारे आपकी इस क्लासरूम से बाहर हैं, उनको ना तंग करिएगा, वो आपकी ये बात सुन के परेशान भी होंगे और आपको भी परेशान करेंगे। आपको जिस बात पे दिल ठुकेगा वो करें, नहीं दिल करता तो छोड़ें, जहाँ पढ़ रहे थे पढ़ते रहे। जिस दर्जे की भी नमाजें होंगी अल्लाह ताला के पास, फिर उसका जाके फैसला होगा। लेकिन ऐसी नमाजों पे, ऐसे मसलों पे अमूमन लोग परेशान होते हैं, और सबसे ज़्यादा हम फितने में तब आते हैं जब हम नमाज के बारे में बात सुनते और करते हैं। तो बहरहाल सजदा करने का तरीका आपने देख लिया कि ज़मीन पे कोनियाँ नहीं लगेंगी, कोनी ऊपर होगी। हाँ, औरत और मर्द का कोई फ़र्क है? नहीं। सल्लु कमा राई तुमोनी उसल्ली, तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज पढ़ता देखते हो। मैं यहाँ एक बहुत गलत फहमी का इजाला करना चाहूँगी, आप बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिए। ये सवाल जो आता है ना, औरत की नमाज मर्द की नमाज, इसका फ़र्क पता चलेगा। मुझे ये बताइए कि रोज़ा रखने के किसी तरीके में औरत और मर्द का कोई फ़र्क दिखता है आप में से किसी को, कि औरतें कमज़ोर हैं, चलें वो फजर के बाद भी सुबह तक खाती रहें और मर्दों से पहले खोल लें? नहीं है ना। तरावी की रकत में मर्दों और औरतों में कोई फ़र्क देखा? ठीक है। हज करते हैं, क्या हज में औरत के कुछ कमी है मर्द से? कलमा पढ़ने में औरत के लिए कुछ कमी है? नहीं है ना। ज़कात के निसाब में औरत के माल में कुछ कमी है मर्द से? तो फिर नमाज में क्यों? सोचिए, पूरी सारी इबादत, 5 पिलर्स है ना नमाज, के तौहीद से लेके जिहाद तक की जो बातें, ये रोज़े की, ये सारे फ़राइज़ हैं, किसी में फ़र्क नहीं। नमाज में फ़र्क इतना है सिर्फ 70 का जो हम पढ़ चुके, कि औरत सर से लेके पाँव तक छुपाएगी, हालांकि मर्द के लिए यह है कि वो सिर्फ अपना सतर छुपा के कंधों को छुपा लेता है, सर भी खुला रहता है तो कोई नहीं। औरत और मर्द की नमाज में सिर्फ फ़र्क है सतर का, दैट्स इट। फिर फ़र्क कहाँ है ये भी समझ लेते हैं। देखिए, औरत और मर्द में फ़र्क है ज़रूरियात ज़िंदगी का। मर्द मजबूत है, कमा सकता है, अमूमन जज्बाती तौर पे स्ट्रांग होता है, माल कमा सकता है। उसे कहा जाओ तुम बाहर कमाओ। औरत नाजुक होती है, उसके अंदर इतनी इस्तेतात नहीं होती, जहनी तौर पे कमज़ोर होती है, जज्बाती होती है, इसीलिए उसमें ममता के जज्बात भर के कहा इस तुम बच्चों को पालो। सिर्फ इंतज़ामी ज़रूरियात के मरहलों में थोड़े से हुक्म फ़र्क है। औरत में खूबसूरती है, अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करती है, इसलिए उसे कहा तुम अपने चेहरे को भी छुपा लो, अपने आप जिस्म को छुपा लो। मर्द को कहा तुम भी निगाहें झुकाओ, औरत भी झुकाएगी। जरूरत की तकाजे, दीनी रिचुअल्स में स्पेशली जो हम नमाज की यहाँ बात करें, सेंस ही नहीं बनती कि औरत को कहा जाए कि इसकी नमाज ऐसी और मर्द की ऐसी है। तो लिहाजा बहुत शरह सदर के साथ हो। सजदा कितना होना चाहिए, आपने बताया कि नीचे से एक बकरी का बच्चा अगर गुजरना चाहता तो गुजर सकता। इस तरह से हुक्म है कि सजदा जो वो बहुत ना हो। आपने कि इस तरह अपने बाजू ना बिछाओ जैसे दरिंदा बिछाता है, यानी कल्ब के लफ्ज आते हैं हदीस में, कि दरिंदों की तरह अपने पाँव जैसे पंजे, आपने कभी शेर को देखा होगा कि वो किसी को पकड़ने के लिए बैठते हैं ना, पूरे पंजे बिछा के धाड़ने की कैफियत होती है या किसी को पकड़ने की, कहा वैसे ना तुम ना करो। तो इस तरीके से फिर नमाज इंशाल्लाह ताला अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनेगी। और जब इंसान सजदा करता है तो शैतान को इतना रोना आता है, कहता है अफसोस आदम के बेटे, तुझे सजदे का हुक्म दिया और तूने कर लिया, और मुझे सजदे का हुक्म हुआ और मैंने सजदे से इनकार करके तो मैं जहन्नमी बन गया। फिर सजदा कितना तवील किया जा सकता है। अल्लाह के नबी इतना लंबा सजदा करते थे कि हज़रत आयशा कहती हैं कभी कभी तो मैं समझती कि आप फौत हो गए हैं, आपका दम निकल गया सजदे में। अकेली नमाजें हों, लंबे सजदे कीजिए, आपका सजदा, सजदे के बाद उठना, सजदे में जाना बराबर होता था। जितनी देर सजदे में जाते उतनी देर ही बैठते, वो भी इसके आगे हम देखेंगे। जी नेक्स्ट कीजिए। ये देखिए अब अगली बड़ी बुनियादी, जी सजदे से उठने के बाद क्या इन्होंने कहा अल्लाह अकबर, लेकिन यहाँ हाथ नहीं उठेंगे। दूसरी बात, ये सजदे दो सजदों के बीच में बैठने की जगह है। ये पाँव की पोजीशन देखिए, सीधा पाँव खड़ा होके उसकी उंगलियां अंदर को मुड़ी हुई हैं, और उल्टा पाँव यानी लेफ्ट साइड को फोल्ड करके उसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये बैठने की पोजीशन है। और इस दौरान, सजदे के दौरान जो बैठने की दुआएं हैं, बल्कि हमने सजदे की दुआएं तो देखी ही नहीं है, वो पीछे गुजर गया चैप्टर, यानी सजदे जैसे हमने रुकू की दुआएं देखी हैं, इसी तरह सजदे की भी दुआएं अल्लाह के नबी से मिलती हैं। मसलन सुबहान रब्बी अला अला 3 दफ़ा पढ़ना, सुबहान रब्बी अला अला व बिहम्दी ही पढ़ना। तीसरी दुआ है सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दी का अल्लाहुम्मा अग़फिरली। चौथी दुआ है सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, ये रुकू में भी थी, दोनों जगह चलेगी। ये अगली दुआ जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी, और जब वाकई बंदा अपने किसी गुना के जज्बे से सरचार होता है तो उस वक्त ये दुआ पढ़ सकता है कि अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़म्बी कुल्लहू दिक़हू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। ए अल्लाह, मेरे छोटे और बड़े, पहले और पिछले, यानी पिछली जिंदगी के किए हुए या जो मैं आइंदा करूंगी, जाहिर और पोशीदा तमाम गुनाह बख्श दे। अब बताइए ये सोच के साथ पढ़ी हुई नमाज और रस्मी नमाज में कोई फर्क होगा? जमीन आसमान का फर्क होगा। फिर सुबहानका व बिहम्दी का ला इलाहा इल्ला अंता। और एक और दुआ जो बड़ी प्यारी दुआ आप में से बहुत सारों को आती भी होगी, अल्लाह के नबी सजदों में वो भी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा जाल फी कल्बी नूरा वफी बसरी नूरा वफी समई नूरा वई यमीनी नूरा वई यसारी नूरा वफौकी नूरा वतहती नूरा व इमामी नूरा वखल्फी नूरा व अज़्ज़िमली नूरा। यही दुआ आप फजर की सुन्नतों के बाद मस्जिद की तरफ जाते हुए भी पढ़ते थे। तर्जमा क्या है, ए अल्लाह मेरे दिल, मेरी बसारत और समात को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा, मेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे सामने और पीछे हर तरफ नूर फैला दे और मेरी हिदायत की रोशनी को बढ़ा दे। मुबालगा पन है, ऐसे जैसे वालेहाना पन है, बंदा चाहता है कि बस अल्लाह नूर उस समावात के साथ मेरा ताल्लुक जुड़ जाए कि मेरी भी जिंदगी में रोशनी आ जाए। फिर सजदे में एक और दुआ थी, अल्लाहुम्मा आउज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिका व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिका व आउज़ु बिका मिनका ला उख्सी सनान अलैका अंता कमा अस्नैता अला नफ़्सिक। ए अल्लाह, मैं तेरी रजामंदी के जरिए तेरे गुस्से से, तेरी आफियत के जरिए तेरी सजा से और तेरी रहमत के जरिए तेरे अजाब से पनाह चाहता हूँ। मैं तेरी तारीफ को शुमार नहीं कर सकता, तू वैसा ही है जैसे तूने अपनी खुद तारीफ फरमाई। कितनी राजदारियां है ना, राजो न्याज है रब के साथ, अल्लाह की तारीफें हो रही हैं। इसी तरह एक और दुआ, अल्लाहुम्मा लका सजदतु वबिका आमनतु वलका अस्लमतु सजद वजहिया लिल्लज़ी खलकहु वसव्वरहु वशक्क समअहु वबसरहु तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ए अल्लाह, तेरे लिए मैंने सजदा किया, मैं तुझ पर ईमान लाया, मैं तेरा फरमा बरदार हुआ, मेरे चेहरे ने अपनी इस जात को सजदा किया जिसने उसे पैदा किया, इसकी अच्छी सूरत बनाई, इसके कान और आंख को खोला, बेहतरीन तख्लीक करने वाला अल्लाह बड़ा बाबरकत। तो बहरहाल इनमें से आपको जो भी दुआ आसान लगे या जो भी आप याद करें, और दुआओं को मंत्र की तरह नहीं पढ़ना चाहिए, इसकी रूह को समझ के, इसकी सेंस को लेके इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो जो भी चीज़ होगी इसको करें। इसके बाद फिर जब आप बैठते थे, जिस तरह अब आप देख रहे हैं पोजीशन, तो सीधा पाँव खड़ा रखते और उल्टा पाँव जो था उसको लिटाते, जब तक पूरी सारी हड्डियां अपने ठिकाने पे ना आती, आप बैठे रहते। और उसके दौरान जो दुआएं पढ़ी जाती थी, अल्लाहुम्मा अग़फिरली वरहमनी वाफ़िनी वहदिनी वरजुक, जो लोग दो सजदों के बीच में कमर भी सीधी नहीं करते, वो इतनी प्यारी दुआएं जो है उसको मांगने से महरूम रहते हैं। इस कैफियत को जलसा कहते हैं। जलसा दुआ क्या है? ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे हिदायत दे, मुझे आफियत दे और मुझे रोजी अता कर। किसी के लिए कुछ नहीं मांगा, सब कुछ आपने अपने लिए मांगा। इसी तरह खाली ये भी कह सकते हैं, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर। अब इसके बाद आप देखें दूसरा सजदा।
سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى
जी, अब ये दूसरा सजदा बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे करते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये देखिए ये कैफियत, इसको भी हमारे यहाँ काफी इग्नोर किया जाता है। इसको कहते हैं जलसा इस्तराहत, दूसरे सजदे के बाद दोबारा टिकना। अमूमन लोग दूसरे सजदे के बाद खड़े हो जाते हैं ना, खड़ा नहीं होना, दोबारा दोबारा वापस बैठिए। इसमें जितना देर आप चाहें बैठें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में जब जिस्म भी थोड़ा भारी हुआ, कमज़ोरी भी थी, तो आप इस मौके पे पूरा टिकते। और जब आप समझें कि अब आप एक रकत के बाद अगली रकत के लिए खड़े होने चाहते हैं, तो फिर आप दोबारा खड़े होंगे और फिर वही कैफियत जैसे पहली रकत पढ़ी वैसे दूसरी पढ़ेंगे। तो इस वक्त कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ मुझे तो इसको देखते हुए ऐसे लगता है कि ये वो जैसे आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो एकदम आप थक के फिर खड़े हो जाते हैं ना कि जरा सांस सीधा कर ले, ये बिल्कुल वो कैफियत है। खामोश रहे, जितना मर्जी बैठे, आपका दिल चाह रहा है आराम करने को आप आराम करते रहे। और आप देखिए जब हम थके होते हैं और हम टांगे मोड़ के इस कैफियत में बैठते हैं, तो वाकई ऐसे एक बॉडी में जैसे टांगों ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक पुशिंग की कैफियत आती है। अब इसके आगे देखते हैं, अब ये तो दोबारा नहीं खड़े होंगे क्योंकि अब ऐसे ही सारी रकतें रिपीट होंगी ना। अब इसके बाद तशहुद पे आएंगे, करें
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
جي ابھی آپ یہاں دیکھیں کہ پہلے تو یہ بتائیں انہوں نے ابھی بیٹھنے کے بعد کیا پڑھا, لفظ بولیے جو انہوں نے بولے, ہم کیا بولتے ہیں؟ اتحیات. یہ اتحیات کسی زبان کا لفظ نہیں ہے, نہ اردو کا, نہ عربی کا, نہ پنجابی کا. اتحیات یعنی اس کا پروناؤنسیشن ہے, آپ پڑھیں میرے ساتھ, اتحیاتو اتحیاتو للہ والصلواتو والطيبات السلام عليك अय्युहन्नबीयु वरहमतुल्लाही वबरकातुहु अस्सलामु अलैना वअला इबादिल्लाहि सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलु। तो यहाँ लफ्ज़ सही करना है अत्तहियात, ये अत्तहियतुन का का जमा है। और आप देखिए इसमें कौली फेली माली बात, तोहफों को कहते हैं तहिया। किसी को मिलते वक्त जो सलाम करते हैं वो होता है तहिया, तहिया। पहले लोग हिया किल्ला कहते थे या हैया किल्ला, तुम जिंदा रहो सलामत रहो। तो बहरहाल ये पढ़ने का अंदाज पहले देखा। फिर दूसरी चीज देखिए, आप देख रहे थे उंगली, इसको सबाया की उंगली कहते हैं, यानी ये जो शहादत की उंगली है ना, इस उंगली को हरकत करते हुए आपने देखा होगा, इसके लिए सबाबा कहते हैं इस उंगली को, यानी मुख्तलिफ वक्तों में खड़ी करना। तो ऐसा पढ़े ना अत्तहियातुलिल्लाह, उंगली खड़ी, अशहदुअन्ना अल्लाहुम्मा सल्लम, यानी जब कोई नई चीज़ शुरू करें एक दफ़ा उंगली खड़ी करें, रोकें। और हाथ रखने का तरीका भी आप समझ लेंगे इसके लिए इंशाल्लाह ताला, कि जब हम खड़े होते हैं तो जो राइट हैंड है ना, ये कैफियत, अगर आपको मेरा हाथ दिख रहा है, इसको अरबी में 53 का अदद कहते थे, 53। यानी अरबी के लोग, अरब लोग जो है गिनती कैसे याद करते थे आपको पता है? कागज पेन तो होते हैं, ये हाथों के एक्शन से करते थे, जैसे ये है 1 2 3 4, तो 53 दिखाने के लिए ये कैफियत थी। तो हमारी ये राइट जो सीधा हाथ होगा ना, ये हमारे इस शोल्डर के ऊपर, ये क्या है, नी के ऊपर इस तरह आएगा, और ये उंगली थोड़ी थोड़ी बस अल्लाह अशहद रब्बना, पूरे तशहुद में गाहे बगाहे करें, सिर्फ अशहद अल्लाह पे इसको खड़ा करना, ये मसनून नहीं है। और ये जो राइट लेफ्ट साइड होगी हमारी, इससे हमने पूरा, जैसे हमने रुकू में हाथ रखा हुआ था ना ग्रिप की सूरत में, जैसे मुर्दा सा ढीला ढाला नहीं, इस तरह पूरा खोल के, तो इस तरह से ऐसे रखें कि जैसे अपने शोल्डर को पकड़ने वाली कैफियत है। अब इसमें आप पहले तहियात पढ़ा, अब इसमें पढ़ी आगे करें।
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
अब आप देखिए कि इसके बाद यानी सबसे पहले अत्तहियात, फिर दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन तो हम पढ़ते ही हैं और मतलब मारूफ है। एक और दुरूद भी है, छोटा है उससे, लेकिन हमारे यहाँ इतना मारूफ नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैत अला आलि इब्राहीमा व बारिक अला मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारक ताला इब्राहीमा इन्नक हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद शरीफ भी पढ़ा जा सकता है। और इन दोनों के बाद अगर तो आप दूसरी रकत का तशहुद है ना, तो फिर एक और मुगालता है हमारे यहाँ नमाजों में, जो मिस्टेक है, हम अत्तहियात के बाद खड़े हो जाते हैं ना अशहादो के बाद, लेकिन दुरूद शरीफ के बाद खड़ा होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लम पे दुरूद पढ़ने के बाद खड़े होंगे। ये तो हो गया दूसरा, लेकिन अब आखिरी है, तो इसके बाद फिर दुआएं। ये है वो मुकाम, जितनी ज्यादा दुआएं मांग सके अपने लिए मांग लें। इस वक्त अल्लाह के साथ आपका वो ताल्लुक जुड़ चुका होगा कि इंशाल्लाह जो आपकी नमाजों में बरकत देगा। बहुत सारी दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, आप अपनी जाती तौर पे भी मांग सकते हैं, और इस तरह यहाँ मांग के तो फिर आखिर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सीधी तरफ, और फिर अस्सलामु अलैकुम बाईं तरफ। और उस वक्त सलाम फेरने में भी हमें देखना है पूरी गर्दन, यानी आपकी चिन जहाँ तक आनी चाहिए, अस्सलामु अलैकुम इस तरह, और फिर पूरा इधर जाएगा, यानी कि थोड़ा सा मोड़ के आप छोड़ दें, यानी पूरा आखिर तक जाएंगे, और इसी तरह से फिर आपकी नमाज पूरी होगी। पहले दौर में लोग क्या करते थे कि सलाम के साथ हाथ भी मिलाते थे अस्सलाम वालेकुम, तो उसके ऊपर फिर वो आयतें उतरी कि आपने कहा कि तुम अपने हाथ ना हिलाओ जैसे घोड़े की दुमे हिलती हैं। आज कुछ लोगों को मुगालता लगा, उन्होंने उन्हीं हदीसों को रफुल जदैन करने पर रोक लिया। इस पे बहुत लंबी बहस है, आप पढ़ेंगे खुद इस बुक में कि रफुल जदैन जो लोग नहीं करते वो क्या दलाइल देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो लोग कुछ बगलों में बुत उठा के ले जाते थे, कुछ ऐसी बातें आपने कभी सुनी होंगी, इंशाल्लाह उस सब के आपको दलाइल मिलेंगे। जी ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इससे फिर इसके बाद नमाज पूरी आपकी जब हो गई तो उसके बाद आइए। जी सवाल कीजिए।
दौरान नमाज नजर किधर होनी चाहिए, सजदे पर होनी चाहिए, पांव पर होना चाहिए,
क्या मतलब?
नजर हमारी किधर
हमारी
होनी
नजर
चाहिए?
सजदे की जगह पे। एक और चीज जो इस प्रेजेंटेशन से वाजे नहीं, वो मैं आपके लिए वाजे कर देती हूँ। देखिए कि दो तरह से हम तशहुद में बैठते हैं, एक वो होता है जो दूसरी रकत है जिसके बाद आपने खड़ा होना होता है, और एक वो रकत होती है जिसके बाद आपने सलाम फेरना है। इन दोनों के बैठने में फर्क है। क्या फर्क है? एक तरीके का हमने अभी देखा ना, सीधा पाँव खड़ा है और उल्टे पाँव को बिठाया हुआ आपने, ये वो तशहुद है जिसके बाद आपने खड़ा होना होता है। यानी जो दूसरा तशहुद होगा उसमें आप बैठेंगे कैसे, कि सीधा पाँव आपका खड़ा होगा और उल्टे पाँव को लिटा के उसके ऊपर आप यानी अपने आप को बिठाएंगे। इस कैफियत को अरबी में क्या कहते हैं? तवरुक। तवरुक जैसे हमारे यहाँ एक तबरुक का लफ्ज है ना, इसी तरह का एक लफ्ज होता है। नहीं, तबरुक वो होता है जो आखिरी है। उसमें क्या करेंगे, आपके जो इस पाँव पे आप बैठे थे ना, उसको आगे निकाल के तो आप जमीन पे बैठेंगे। तस्वुर में लाए कि आप पाँव पे बैठने के लिए पाँव अंदर कर ले, क्योंकि इस कैफियत में बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दुबले पतले लोग तो आराम से बैठ जाएंगे, और जो बेचारे ज्यादा जिसम मतलब वजन हो चुके हैं उनके लिए मुश्किल है। तो फिर उसके बाद फिर उसको निकाल के पाँव अंदर और आप जमीन पे बैठेंगे, ये होता है आखिरी तशहुद। अब देखिए कि बाज दफा आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, आप देखते हैं वो तशहुद में, अब आपको समझ नहीं आ रही, अब सर पे खड़े, अच्छा तशहुद में शायद सलाम फेरने वाली है, वो बाद में पता चलता है वो फिर खड़ी हो गई, तो आपका ये मुगालता कैसे दूर हो सकता है उनके पाँव से ही देख के। जिस रकत के बाद आपने सलाम नहीं फेरना उसमें बैठेंगे तो बायां पाँव बिछा के उसके ऊपर बैठेंगे, और सीधा पाँव तो हर सूरत में खड़ा रहता है। लेकिन जिस कैफियत के बाद आपको सलाम फेरना है, जो लंबा होता है, जिसमें दुआएं भी पढ़नी है, जिसमें आपने तहियात के बाद दुरूद भी पढ़ना है और बाकी चीज़ें, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं आप रिलैक्स होकर बैठें। फिर आपका जैसे मतलब हिप्स हैं, बॉटम पार्ट है, वो ज़मीन पे लगेगा और पाँव जो है वो अंदर लग जाएगा। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान अपनी नमाज को पढ़ सकता है। तो दुआएं इस मौके पे जो हैं वो एक एक करके याद कीजिए, सिर्फ इस मौके पे रब्बना आतिना फिर दुनिया ही नहीं, या सिर्फ आप ये कह लें कि रब्बि ग़फ़िरली वली वालिदैया, अक्सर लोग ये पढ़ते हैं, यानी 25 से ज़्यादा दुआएं। और इस किताब में जो इस मौके की दुआएं ना, यकीन करें कि आपको अल्लाह ताला के शुक्र पैदा करने में बहुत मदद देंगी। और हमारी नमाजें मुझे तो लगता है फीकी चाय है, या नमक के बगैर का खाना, चीनी के बगैर चाय और नमक के बगैर खाना। अल्लाह के साथ ताल्लुक जो दुआओं के जरिए से पैदा होता है वो मिसिंग है इंशाल्लाह। यहाँ से बस फिर ये समझे कि हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। फिर एक दो चीज़ें हैं जो बस आपको नमाज में फ़ायदा है, कि बच्चे को उठा के आप नमाज पढ़ सकते हैं। बच्चा बहुत रो रहा है, तंग कर रहा है, माँ क्या करे, उठा ले, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह अल्लाह के नबी खुद अपनी नवासी को उठा के नमाज पढ़ा करते थे। फिर इसी तरह आप देखिए, नमाज में जिमाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, यॉनिंग करना जिसको बोलते हैं, मुंह पे हाथ रखना चाहिए। आपने कहा कि शैतान जो है वो मुंह में जाता है, और हा हा की आवाज़ निकालें तो उससे तो वो और ही खुश होता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि यानी एक और चीज़ जो नमाज में है वो क्या है, कि नमाज पढ़ी फ़र्ज़, ये बड़ा अहम मसला है, अहम से मराज ये कि थोड़ा सा इसमें लोग मुगालता होता है। फ़र्ज़ पढ़ी, पढ़े, अब आपको सुन्नतें पढ़नी है, अब क्या किया जाए? फ़र्ज़ पढ़ते फ़ौरन झट से खड़े होकर वहीं फ़र्ज़ नहीं, सुन्नत नहीं पढ़ने चाहिए। दो चीज़ें कर सकते हैं आप, बीच में कुछ कलाम या जगह तब्दीली, थोड़ी देर बैठ के जिक्र अस्कार, जो इंशाल्लाह अगला चैप्टर हम कल करेंगे कि नमाज का जिसमें जिक्र की बातें वो कर लें, और नहीं है ना तो फिर आप अपनी जगह हट के दूसरे को दे दें। बाज़ दफ़ा आप देखते हैं मस्जिद में भी लोग जगह बदल रहे होते हैं, तो उसमें अगर बीच में आप काफ़ी देर बैठ गए हैं ना, कोई अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, कोई बात हो रही है, या आप कुछ जिक्र अजगार करें, फिर उसकी ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर पढ़ने के फ़ौरन बाद आप खड़ा होना चाहें तो फिर उसके लिए आप जगह बदल रहे हैं। जी दोनों में, जी दोनों में, हाँ जी। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगर थूक आ जाए नमाज के दौरान क्या की जाए, ऑफ कोर्स अगर नेपकिन है कुछ है, लेकिन नहीं कोई ऐसी चीज़ तो कपड़े के सलगा के लेफ्ट साइड पे, यानी मीन के जो भी यानी हालात हैं, आजकल की मस्जिदों की नौयत फ़र्क है, लेकिन हुक्म यही कि अगर किसी को मतलब थूक आए तो फिर उसको लेफ्ट साइड पे अपने पाँव के नीचे थूकना चाहिए। फिर इसी तरह अगर किसी को नींद आई हुई है बहुत और नमाज पढ़ रहा है, पढ़ने लगे, तो आपने कहा नहीं पहली देर थोड़ी देर लेट जाए, ऐसा ना हो कि वो अपने लिए अस्तगफार की बजाय बददुआ करने लगे। यानी बिल्कुल नींद के गलबे में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। कुरान पाक में भी आप हुक्म पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ला तक्रबु सला तवन तुम सुकारा। फिर उसके बाद सहाबी कहते हैं कि हम नमाज में बातें किया करते थे, यहाँ तक कि ये हुक्म आ गया कि कूमु लिल्लाही कानितीन, कि खामोश रहो। और बात लोग सलाम भी करते थे और इशारे से उसका जवाब भी दिया जाता था। बल्कि ये भी हुक्म है इसमें कि नमाजी जुबान से कुछ ना कि अगर कोई उसको सलाम कर दे तो दाएं हाथ के इशारे से सलाम का जवाब भी दे सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के दौर में इतनी तो अब समझ आ चुकी है लोगों को कि किसी सलाम करने वाले को नमाज सलाम नहीं करनी, नमाज पढ़ने वाले को। और फिर उसके बाद एक छोटी सी बात है, गलती हो जाए नमाज में तो क्या करें, सजदा सहव कहते हैं इसको। बाद लोग इसको सहू पढ़ते हैं, सहू नहीं होता, सहव, सहव एंड सहवन, जान के कोई गलती करना। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, रकत का शक है, तीन पढ़ी है कि चार पढ़ी है, और जहन कहीं और सोच रहा होता है तो फिर वाकई गलती भी लगती है। और जब एक ही तरह की रटी रटाई नमाज है तो गलती लगती लगती है। पहला इसका इलाज तो यह है कि आप रकत सूरतें बदल के पढ़ें, एक में एक सूरत पढ़ रहे हैं तो दूसरे में दूसरी पढ़ें, तीसरे में तीसरी पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी रकतें पढ़ी हैं। लेकिन बिलफर्ज अगर कोई ऐसा हो जाए तो क्या करे, सोचे कितनी पढ़ी है, शक को छोड़ दे, यकीन पर एतमाद करे, तीन पढ़ी है तो फिर उठें एक और पढ़ें, चार पूरी कर लें। या आपको लग रहा है नहीं मैंने चार पढ़ ली है, अब इस पर दिल जम गए तो नतीजा क्या है कि जब नमाज पूरी हो जाए, पूरी नमाज पढ़े, सलाम फेरने से पहले दो सजदे कर दे जैसे करते हैं, और वो सजदे बस उसमें कोई रफुल यदैन नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह अकबर कह के आप सजदे में जाएं, सुभान रब्बी आला आला, सुभान रब्बी आला आला, जो भी आप कहते हैं वो खड़े हों, फिर दोबारा पढ़ें और सलाम फेर दें। मैंने कल ही किसी के साथ शायद नमाज पढ़ी और उन्होंने एक दो दिन पहले एक रकत एक सलाम फेर के फिर सजदे सहव करना, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। पूरे नमाज के अंदर ही अपनी गलती याद आ जाए तो सजदा सलाम फेरने से पहले दो रकत दो नफिल यानी सॉरी दो सजदे करें और सलाम फेर लें। आपने फरमाया कि ये सजदे जो हैं शैतान की जिल्लत का बायस बनते हैं। उसने क्या सोचा था कि मैं इसकी एक रकत कम कराता हूँ, उसको क्या पता था कि बंदे ने दो सजदे और कर लिए। और मैं जो चीज़ महसूस करती हूँ कि शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती है ना वो हमारे सजदे से होती है, और उसके पीछे वही जेलेसी है ना कि उसको भी सजदे का हुक्म दिया गया था और उसने उसको नहीं माना, और इंसान को दिया गया और इंसान अल्लाह ताला के हुक्म से इसको सजदे को मान लेता है। लेकिन बहरहाल इसके अलावा जो बाकी चीज़ें सजदे की हैं, सजदा साहब की, वो दुरुस्त नहीं। कभी ऐसा होता है कि आपको नमाज में नहीं याद आता, नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने के बाद याद आती है अपनी गलती, उसके लिए भी आप दोबारा बैठें अपनी जगह पे, दो सजदे करें और सलाम फेर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी जो आपके लिए होगी। एक दफ़ा अल्लाह के नबी के साथ भी ऐसा हुआ कि आपने बात भी कर ली, बाद में लोगों ने कहा अल्लाह के नबी आज आपने तो तीन रकत पढ़ी या आज आपने पांच पढ़ा दी, असर की नमाज थी, तीन रकतें पढ़ के सलाम फेर लिया, घर भी पहुंच गए। फिर एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी आपने तो आज तीन पढ़े हैं, कहा अच्छा, वापस गए, दोबारा आपने फिर एक रकत और पढ़ाई और उसके बाद दो सलाम फेरा और दो सजदे किए, फिर सलाम दोबारा फेरा। अपने कहा मैं भी इंसान हूँ, मैं बशर हूँ, मैं भूल जाता हूँ, तो तुम मुझे याद दिला दिया करो। और असल में ये दीन सिखाने का तरीका बना कि जिसकी वजह से लोग फिर इस चीज़ को मान रहे। इसी तरह एक दफ़ा जोहर की नमाज़ पढ़ाते हुए आपने पांच रकतें पढ़ा दी, तो फिर उसके बाद जब आपको बाद में पता चला तो आपने फिर दो रकत दो नफिल पढ़ाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। अल्लाह करे कि हमारी नमाजें ज़िंदा हो जाए। अभी तो सिर्फ नमाजों के हमने फिकही पहलू या कुछ मसाइल देखे हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ नमाज की रूहानियत और उसकी स्पिरिचुअलिटी को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये इनमें से कोई एक्शन भी बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि हम बस एक उठक बैठक करें, बल्कि अपने रब से एक कुर्ब पैदा करने की कैफियत, एक ताल्लुक पैदा करने की कैफियत हो। और जब ताल्लुक वाली नमाजें पढ़ी जाती है ना तो उसका असर फिर जिंदगी में बाद में भी आता है कि इन्न सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, के नमाज बेहयाई और मुनकर से बचाती है। अल्लाह करे कि हमारे साथ ऐसे ही हो। जी ये लिखती हैं कि आई डू दी जमात बट आई हैव टू डॉटर्स एंड वन सन इज फाइव, सो वी स्टैंड टुगेदर आल्सो, माई डॉटर वॉन्ट्स टू इमामत, शी इज 10। जी देखिए बच्चा 5 साल का है तो फिर तो वो आपके साथ खड़ा हो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। आप सारे ही एक लाइन में खड़े होंगे, आप बीच में होंगी तो बच्चे साथ में होंगे, आधे इधर और आधे इधर, बेटे को राइट साइड पे कर लें। और आपकी 10 साल की बच्ची अगर उसको नमाज सही आती है, सतर और हिजाब की सारी कैफियत है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी जमात करा सकती है। कैन वी डू टू सूरा, जी बिल्कुल दो सूरतें भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। नाउ माई सन 7 ईयर्स वॉचिंग एंड नाउ ही सेज आई प्रे सलात स्लोली, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हैंड कितना ऊपर उठाना उठाया जाएगा रफुल यदैन करते हुए, ईयर तक। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। दोनों तरह आप करते थे, कानों तक भी उठाते थे और सीधा शोल्डर तक भी रखते थे, लेकिन जो कानों में उंगलियां डालने वाली कैफियत है ना, ये सुन्नत से साबित नहीं है, यानी ये ज़ईफ़ रिवायत है। कैन वी डू मोर देन वन सूरत इन इकामत इन इकामा आफ्टर सूरत? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। वन ऑफ द फेमस टीवी जुमा प्रोग्राम मुफ्ती साहब सेड दैट इफ समवन ओपन हिज हेड मोर देन थ्री टाइम्स देन नमाज ब्रेक्स। मुझे समझ नहीं कि सर को ऊपर करने से क्या मुराद। ओपन मीन यूज हिज हैंड फॉर एनी थिंग फॉर देन नमाज। देखिए जानबूझ के तो कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को ख़ारिश हो जाती है या स्नीजिंग होती है या सर से कपड़ा हिल गया तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस एक्टिविटी से फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको बेहतरीन सदका जारिया बना दे और हम अपनी नमाज़ों की इस्लाह कर सकें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।